ओम शांति। हमारे बीच में है आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, जो पंजाब जोन हांसी से हैं। जैसा नाम है वैसे गुणों से भरपूर हैं। लक्ष्मी समान गुणों को धारण किए हुए लक्ष्मी दीदी जी को ईश्वरीय सेवाएं देते हुए 40 वर्ष हो गए हैं। पंजाब में या और स्थानों में भी योग शिविर कराकर अनेक आत्माओं को परमात्मा का बनाने में मददगार बने हैं। बचपन से ही ज्ञान में हैं। जूरिस्ट विंग के पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी से सब मिलेंगे, इनके वक्तव्य का लाभ उठाएंगे। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को विशेष इस नए वर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर काम दिया है। बाबा की अब तक 3 अव्यक्त वाणियां चली हैं, जिसमें बाबा ने हम सबको विशेष रूप से संतुष्ट मणि बने और बिल्कुल बेफिकर, निश्चिंत, बेफिकर बादशाह होकर के रहें। और नए वर्ष पर विशेष काम दिया बाबा ने, जो आप सबने प्यारे बाबा की मुरली से पढ़ा, सुना, मनन भी किया होगा, कि हम सबको निश्चित रूप से अपने जीवन को पूर्णतया संतुष्ट बनाना है, संतुष्ट मणि होकर के रहना है, समस्या प्रूफ और समाधान स्वरूप बनकर के रहना है। तो हर एक जब अपने अंतर मन में झांक करके देखते हैं कि सचमुच में मेरे जीवन में कितनी संतुष्टता है, तो उसके स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। संतुष्ट माना क्या? इस ब्राह्मण जीवन के अंदर संतुष्टता अर्थात हमें जीवन में जो भी प्राप्तियां हुई हैं, इस जीवन के अंदर जो भी हमारे संबंध हैं, जो हमें पार्ट मिला है, जो हमें स्थान मिला है और जिन परिस्थितियों के बीच में है, उनमें रहते हुए सदा संतुष्ट। सचमुच में अगर विचार करें तो बाबा से हम बच्चों को इतनी प्राप्तियां इस ब्राह्मण जीवन में हुई हैं कि अगर उन प्राप्तियों का आनंद लेते रहें तो कभी असंतुष्टता हो ही नहीं सकती। और सचमुच में दिल से ये आवाज निकलता है कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला, क्योंकि बाबा संसार है, सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। जितना उस सागर में डुबकी लगाते रहेंगे उतना हम भरपूर रहेंगे। जीवन में कभी भी असंतुष्टता होती है तो उसका कारण ही होता है कोई ना कोई अभाव, कोई कमी हम जीवन में महसूस करते हैं तो असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जब बाबा की प्राप्तियों का आनंद लेते रहेंगे तो कहीं खालीपन महसूस होगा ही नहीं, और खालीपन नहीं होगा तो असंतुष्ट भी नहीं होंगे। हम थोड़ा विचार करके देखें कि केवल जो भौतिक चीजें हैं, जो बाहर की वस्तुएं हैं, हम उन छोटी छोटी प्राप्तियों के चिंतन में जब चले जाते हैं तो वहां असंतुष्टता आती है। अगर इस विश्व के इतिहास को देखें तो अनेक ऐसे संत हुए हैं, अनेक ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जो अपने जीवन में भौतिक प्राप्तियों से भरपूर थी, जो राज महल के अंदर थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही अपने बचपन में राज घरानों से संबंधित थे, सब प्राप्तियां, सब कुछ भरपूर था, लेकिन फिर भी एक तलाश थी, एक खोज थी, और उस अंदर की प्राप्ति के लिए सब भौतिक सुविधाओं को भी ठोकर मार के तपस्या के लिए जंगल में चले गए। और जब अपने जीवन के अंदर वो तपस्या की प्राप्ति की, तब अपने आप को सबसे ज्यादा भरपूर, इतना भरपूर कि पूरे विश्व को दे सकते हैं, वो महसूस किया। तो सचमुच में हम बाबा के बच्चे भी जब अंदर से अपने आप को भरपूर करते जाते हैं तो बाहर की चीजें जो हमें असंतुष्ट कर देती हैं वो तुच्छ लगेंगी। अपने सामने हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि आत्मा को एक खोज है, एक तलाश है, शांति की, आनंद की, प्रेम की, सुख की, जो आत्मा के मूल गुण हैं, हर व्यक्ति को उन्हीं की तलाश है। लेकिन उन चीजों को भरने के लिए बाहर का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, बाहर से कितना भी भर लेते हैं, लेकिन जब तक अंदर से खाली है तब तक संतुष्टता नहीं आती है। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर लोग करोड़ों अरबों के घपले करने के बाद भी क्या उनकी प्यास बुझती है? क्यों नहीं बुझी? क्योंकि अंदर से उतने ही खाली है, बाहर से चाहे कितना भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन आत्मिक जो शांति है, प्रेम है, आनंद है, उससे आत्मा खाली है। इसलिए बाबा ने हमें उन प्राप्तियों से भरपूर किया है, उस आनंद और प्रेम से बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं, जो प्राप्ति बहुत अनमोल है। और सचमुच में जब उन प्राप्तियों में रमण करना शुरू कर देते हैं तो हमें कोई भी छोटी छोटी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती, और जब उनकी आकर्षण नहीं होगी तो जीवन में असंतुष्टता भी नहीं होगी। इसलिए इस संगम युग में हर दिन हर पल हम बाबा की प्राप्तियों से अपने जीवन को भरपूर करते ही रहें, उस आनंद से आत्मा को आनंदित करते ही रहें। साथ साथ हमारी असंतुष्टता का एक दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है कि कई बार हम अपने पार्ट से असंतुष्ट होते हैं, खुद के पार्ट से, और उससे भी ज्यादा हम दूसरों के पार्ट से असंतुष्ट होते हैं, जो बेसमझी है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान दिया है कि बच्चे इस ड्रामा में हर पल जो आत्मा जो भी रोल कर रही है वही उसका निश्चित ड्रामा है। इसलिए मुझे जो पार्ट मिला है उसी में मुझे बहुत खूबियां भरनी हैं, और दूसरों के पार्ट को देख करके, दूसरों के रोल को देख करके कभी भी असंतुष्ट नहीं होना, क्योंकि हर आत्मा वही कर रही है जो उसका निश्चित ड्रामा में पार्ट है और जो उसने कल्प पहले किया था। लेकिन यहां हम एक भूल करके असंतुष्ट हो जाते हैं कि हम हर किसी के रोल को बदलना चाहते हैं। जो भी जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं वो ड्रामा अनुसार आ रही हैं, लेकिन हम हर सीन को बदलना चाहते हैं, हम दूसरे के रोल को बदलना चाहते हैं, जो असंभव है। परिवारों के अंदर भी हम देखते हैं, हर सास ये चाहती है कि बहू वैसा ही करे जैसा मैं चाहूं, और बहू की भी ये इच्छा होती है कि सब उसी तरह से करें जो मुझे पसंद है। हर पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जैसे मैं चाहूं वैसा ही सोचे, जैसे मैं एक्टिव हूं तो ये भी एक्टिव होना चाहिए, अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूं तो इसे भी जल्दी उठना चाहिए। यानी हर किसी के रोल को बिल्कुल अपने अनुसार चाहते हैं, ये अपेक्षा जीवन में रखते हैं, और ये अपेक्षा सृष्टि ड्रामा के नियम के अनुसार उचित नहीं है और ये पूरी भी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अपने मन को पहले से ही समझा लेना है कि हर किसी का अपना रोल है, हर किसी के कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है, और अपने अपने कर्म के खाते के अनुसार ही वो आत्मा रोल करेगी, बिल्कुल जैसा चाहूं मैं चाहूं वैसा नहीं कर सकती है। हमारी असंतुष्टता का बहुत बड़ा कारण ये होता है। कई बार हम ज्ञान को भी, बाबा की श्रीमत को भी, मुरली सुनते सुनते भी सब कुछ दूसरों पर अप्लाई करते हैं कि देखो आज बाबा ने मुरली में ये कहा और ये ऐसे करता है, आज बाबा ने कहा गुस्सा मत करो और ये फलाना इतना गुस्सा करता है। बाबा की मुरली किसके लिए है? हे अर्जुन, केवल और केवल मैं हूं। बाबा के हर शब्द को अपने ऊपर अप्लाई करना है कि सुबह से लेकर के शाम तक मैंने बाबा के अनुसार या बाबा की महावाक्यों के अनुसार आज अपनी दिनचर्या को कैसा रखा। लेकिन हम यहां ये भूल करते हैं कि सब कुछ दूसरों के लिए सोचते हैं और दूसरा वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जो करना है वो वही करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोल करके किसी को करेक्शन देते हैं और हमारे बोल वाली करेक्शन को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम अंदर ही अंदर अपनी सोच के अंदर दूसरों को करेक्ट करते रहते हैं। हम अंदर में सोच रहे हैं, बाप अंदर में सोच रहा है कि बेटे को ऐसा करना चाहिए, बहू को ऐसा करना चाहिए, और वो वैसा नहीं कर रहे हैं, तो ये जो सारा टाइम जाता है ये कहां जाता है? ये सब वेस्ट हो रहा है, अपने समय को वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, और जब इतनी सारी वेस्टेज होती है तो वहां असंतुष्टता तो होगी ही। इसलिए हमें अंदर से ये पक्का करना है कि मुझे अपने पार्ट से संतुष्ट रहना है, मुझे दूसरों के पार्ट से भी संतुष्ट रहना है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी का अर्थ ही है कि मैं अपने रोल को भी इंजॉय करूं और दूसरों के रोल में भी दोष ना निकालूं। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल निर्दोष है। हर सेकंड जो सीन आ रही है वही सही है। जो व्यक्ति जो रोल कर रहा है अपने अनुसार वही सही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर घर में बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उन्हें करेक्ट ना करें। शुभ भावना से अगर हम बड़े हैं तो उन्हें अपनी गाइडेंस जरूर दें, लेकिन कंट्रोलर ना बने। इतना कंट्रोल कि बिल्कुल मेरे अनुसार करे, और नहीं होगा तो असंतुष्टता। इसलिए हम शुभ भावना से गाइड अवश्य करें, उसके बाद वो जैसा भी रोल करता है उसमें हम संतुष्ट रहें। इसको कहेंगे साक्षी भाव। सुबह से शाम तक हर किसी के रोल को भी न्यारा होकर के देखना, अपने रोल को भी न्यारा होकर के देखना, निर्लिप्त भाव से, निर्दोष भाव से, संतुष्टता के भाव से हर एक के पार्ट को देखना, इसको कहेंगे साक्षी भाव, जिसमें हम कभी भी दूसरों के पार्ट से परेशान नहीं होंगे। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि कुछ आत्माएं बिना किसी कारण के हमें कष्ट पहुंचाती हैं, हमारे काम में रुकावट डालती हैं, हमारे लिए समस्या बनती हैं, तो वहां असंतुष्टता आने की संभावना रहती है। लेकिन वहां भी हमें बाबा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार एक बहुत सुंदर राज को समझना है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के हमें कष्ट दे रहा है, हमारे लिए समस्या बन रहा है, उसके पीछे भी कोई कारण है। कोई ना कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है जिसे वो आत्मा चुकतू कर रही है। इसलिए वहां भी ये सोच करके चलें कि ये मेरा ऋण, जो पुराना कर्जा है, वो चुकतू हो रहा है। और अगर कोई भी आत्मा इस प्रकार से विघन रूप बनती है, उस कर्जे को हम खुशी खुशी से चुकतू करते हैं तो वो अकाउंट हमारा चुकतू हो जाता है। और अगर उसे बहुत दुख के साथ, बदले की भावना के साथ, अशुभ संकल्पों के साथ, नेगेटिव थिंकिंग के साथ उसको फेस करते हैं तो एक नया अकाउंट और बन जाता है जिसे हमें फिर चुकतू करना पड़ेगा, और वहां असंतुष्टता भी रहेगी। कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी जो हमें बहुत सहयोग देंगी, सुखदाई होंगी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सहयोग देंगी, तो ये भी हमारा कोई कर्म खाता है। तो इसलिए अपनी संतुष्टता को परिपक्व रखने के लिए हमें कर्म के इस हिसाब किताब को भी जीवन में समझ कर चलना है। उसके साथ साथ कई बार हम संबंधों से असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जीवन में हमें जो भी साथी मिले हैं, चाहे वो लौकिक परिवार में हो या अपने इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अंदर हो, जो आत्माएं हमारे नजदीक हैं, जिनका हमारे साथ रोल है, हम उन्हें कभी भी दोषी ना समझें। कई बार कुछ एक को घर के अंदर ऐसी धारणाओं के कारण या किसी भी कारण से पारिवारिक जीवन के अंदर कुछ समस्याएं आती हैं, तो कभी कभी माताओं को या भाइयों को ऐसे संकल्प आते हैं कि मैं इसी परिवार में क्यों हूं, मेरे ही ऐसे संबंध क्यों हैं, अगर मेरे संबंधी अच्छे होते तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता, बहुत संतुष्ट रह सकता था। लेकिन ये सोच भी हमारी बेसमझी है, क्योंकि जो भी संबंध हमें मिले हैं उन्हीं के बीच में रहते हुए कल्प पहले भी मैं आत्मा विजयी बनी थी और अभी भी बन सकती हूं, और उन्हीं आत्माओं के साथ रहना यही मेरा पार्ट है, जिस पार्ट को मुझे बहुत संतुष्टता से बहुत खुशी से निभाना है। और साथ साथ संबंधों में कभी भी कटुता ना आए, हम सदा प्रसन्न चित रहें, उसके लिए सभी के प्रति एक क्षमा भाव, क्षमा भाव भी हो और साथ साथ किसी आत्मा ने कुछ भी किया है हम उसे भूल भी जाएं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कई बार हम फॉरगिव तो कर देते हैं लेकिन हम भूलते नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखते हैं, और जब पकड़ के रखते हैं तो उनका चिंतन भी चलता है और उसमें हमारा बहुत सारा समय और शक्ति वेस्ट हो जाती है। इसलिए जहां तक संबंधों की बात है, अनेक आत्माओं की बात है, और वहां हमें बिल्कुल संतुष्ट रहना है, तो हम क्षमा भाव रखें। बाबा हमें अक्सर कहते हैं कि बच्चे, या तो चित्त के अंदर बातें रहेंगी और या बाप रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। इसलिए जितना हम बातों को पकड़ के रखते हैं और उनको सोचते हैं तो उसमें हमारी बहुत शक्ति वेस्ट हो जाती है, और उन बातों के चिंतन में, व्यर्थ के चिंतन में जब इतनी सारी एनर्जी चली जाती है तो जहां खालीपन है वहां असंतुष्टता तो होगी ही। तो इसलिए साथ के साथ समेटते चलें। दादी जानकी जी बहुत अच्छी बात हमें सुनाते हैं कि एक घंटा पहले भी जो बात हुई उसको भी बिंदी लगा दो, वो भी याद ना रहे। और एक घंटा तो क्या, हम कितने समय पुरानी बातें भी, 6 मास, 5 साल, 10 साल पुरानी बात भी कई बार भूलते नहीं हैं। इतने ज्ञानवान और इतने समझदार होते हुए भी फिर पुरानी बातों के चिंतन में चले जाते हैं। तो इसलिए इसी के अंदर है ना, संतुष्ट मणि होकर के रहना है तो प्रसन्न चित रहना है, प्रश्न नहीं, समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। और वैसे भी हम सबका लक्ष्य क्या है कि हम सभी सूर्य वंश में आएंगे, और सूर्य वंश का जो सिंबल है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी को हमेशा किस रूप में दिखाते हैं? चंद्रवंशी श्री राम, उनके लिए तो फिर भी दिखाते हैं कि कुछ समस्याएं आई तो थोड़ा सा उलझ गए, रोने भी लगे, मायूस हो गए, लेकिन श्री कृष्ण के लिए क्या दिखाते हैं कि बचपन से लेकर, जन्म से लेकर के बहुत सारी चीजें आई, अकासुर बकासुर पूतना ये वो बहुत कुछ, लेकिन हर परिस्थिति को बड़े सहज भाव से पार किया और उसके बाद फिर से नाचने लगे। सर्प की जो इतनी बड़ी समस्या थी, इतना बड़ा सर्प दिखाते हैं नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर भयंकर सर्प, लेकिन उसको भी पार करके उसके ऊपर भी नाचने लगा। तो ये सब कुछ क्या है? बड़ी से बड़ी चीजों को पार किया, फिर बांसुरी बजाने लगा, फिर नाचने लगा, फिर गाने लगा। तो श्री कृष्ण सूर्यवंशी आत्मा माना, नो प्रॉब्लम, समाधान स्वरूप, सॉल्यूशन नेचर होंगे। चंद्रवंशी किसी न किसी समस्या में उलझे ही रहेंगे, कभी अपनी कभी दूसरों की, कोई न कोई बात का क्वेश्चन मार्क रहेगा ही, और असंतुष्टता जीवन में साथ साथ चलती रहेगी। तो हम सबका लक्ष्य है सतयुग में आना, सूर्यवंश में आना। तो सूर्यवंशी आत्मा माना समाधान स्वरूप, हर बात को समेटते चलें, बिंदी लगाते चलें और प्रसन्न चित रहें। इस जीवन के अंदर, इस संगम युगी जीवन के अंदर हमें बहुत बहुत सुनहरी मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है कि इस समय हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव पूरे कल्प में रहता है, पूरे कल्प में। हमारा एक एक संकल्प हमारी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहा है, संपूर्ण सृष्टि। कहते ना, भगवान को भी एक संकल्प उठा और उससे सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो हम सब आत्माएं भी, संगम युगी बाबा के बच्चे भी, दादी जी हम सब बीच में आ गए हैं।